ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत रूस के मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जेएनयू के रूसी और मध्य एशियाई अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर संजय कुमार पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
प्रोफेसर पांडे, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
तो जैसा कि आज का हमारा ये कार्यक्रम भारत रूस संबंधों पर आधारित है और हमें पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय रूस में है और वहां पर रूस के राष्ट्रपति के साथ जो शिखर सम्मेलन हमारा भारत और रूस का हर वर्ष होता है इसके बारे में बातचीत करने के लिए, तो शुरुआत में प्रोफेसर पांडे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारत और रूस के बीच वो कौन से ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें हमारी लंबे समय से परस्पर भागीदारी चल रही है।
जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि भारत और रूस के संबंध बहुत पुराने और बहुत प्रगाढ़ हैं। सोवियत समय से 1950 के दशक में 55-56 में इन संबंधों की मजबूत नींव पड़ी। उसके पहले भी संबंध थे लेकिन आज जैसा कि हम जानते हैं भारत रूस संबंधों को, उनकी नींव जो है 55 में पड़ी थी और तब से सोवियत संघ ने भारत को अन्यान्य तरीकों से मदद की है। हमारे औद्योगिक विकास में उनकी बड़ी भूमिका रही, चाहे वो बोकारो और भिलाई के स्टील प्लांट्स हों या भेल जैसे औद्योगिक कारखाने हों या दिग्बोई का तेल कारखाना हो या अन्य कई इस तरह की योजनाओं में सोवियत संघ की प्रमुख भूमिका रही है, तो इन संबंधों को उस लिहाज से देखना चाहिए।
तो सोवियत संघ के जमाने से जैसे आपने कहा संबंध है और जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और रूस एक प्रमुख देश के रूप में उभरा, तो क्या इन संबंधों को कोई नया स्वरूप मिला या कोई नए आयाम मिले?
जी देखिए, 1991 में 1991 में सोवियत विघटन के बाद रूस अगले करीब 10 सालों तक अपने आंतरिक मामलों जैसे आर्थिक सुधार जो देश के अंदर उनको करने थे उनमें काफी उलझा हुआ था और विदेश नीति पर उतना ध्यान वो नहीं दे पा रहा था। इस दौरान थोड़ी अनिश्चितता 1990 के दशक में भारत रूस संबंधों में आई, हालांकि द्विपक्षीय मुलाकातें होती रहीं, रूस के राष्ट्रपति आए, हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव गए, लेकिन 2000 में जब राष्ट्रपति पुतिन पहली बार राष्ट्रपति बने और मई में उन्होंने शपथ लिया था, अभी मई में उन्होंने पुनः शपथ लिया है, उसके बाद अक्टूबर में वो भारत आए और जो हमारा सामरिक सहयोग का समझौता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अग्रीमेंट है, उस पर दस्तखत किए गए, तब से संबंधों में एक नया आयाम आया। ये चलता रहा, 21 सालों तक ये सिलसिला अनवरत चला है। 2021 के बाद क्योंकि विशिष्ट परिस्थितियां थी कोविड की, इसलिए 2-3 सालों के लिए व्यवधान आया। हमारे नेता अन्य स्तरों पर मिलते रहे लेकिन द्विपक्षीय जो वार्ता थी वो 21 के बाद 22वीं वार्ता अभी हो रही है। हमें ये भी ध्यान देना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार शपथ ली है प्रधानमंत्री के रूप में और उनका किसी देश को ये पहला दौरा है द्विपक्षीय बातचीत के लिए। इसके पहले वो गए थे G7 के लिए लेकिन वो द्विपक्षीय नहीं था। तो ये रेखांकित करता है भारत और रूस के विशिष्ट संबंधों को, तो इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को बहुत ज्यादा महत्व देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने तकरीबन 10 साल पहले 2015 में एक बार राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए कहा था कि हमारे देश में भारत में बच्चा बच्चा ये जानता है कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी सबसे विश्वसनीय मित्र कौन है और वो रूस है। और अभी भी जब वो मॉस्को में हैं तो उन्होंने अमर प्रेम और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है भारत और रूस की दोस्ती को बताने के लिए। तो और ये संबंध जो हैं वो प्रगाढ़ तो हैं ही हैं, ये बहुआयामी हैं। राजनीतिक संबंध तो हैं ही हैं, उसके अलावा आर्थिक, सांस्कृतिक, रक्षा के क्षेत्र में हम जानते हैं कि भारत आज तक सबसे ज्यादा रक्षा आयात जो है वो रूस के साथ करता रहा है, करता है, अभी भी करता है। ये बात अलग है कि विगत चार पांच वर्षों में, दस वर्षों में थोड़ी कमी इसमें आई है। नंबर एक अभी भी रूस है, लेकिन पहले दस साल, पंद्रह साल, दस साल पहले तक, पांच साल पहले तक आधे से ज्यादा रक्षा आयात जो है वो रूस से हुआ करता था। अब वो प्रतिशत में कमी आई है, लेकिन फिर भी नंबर एक अभी भी रूस है। और यही बात नहीं है, जिस प्रकार का रक्षा सहयोग है हमारा रूस के साथ, जिसको कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो तकनीकी है, जो बहुत ही आधुनिक किस्म के उनके शस्त्रार्थ हैं, जैसे कि उनके सुखोई या मिग 29 या T-72, T-90 टैंक्स, इन सब का जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को मिलती रही है रूस से, और हमने ये सब जो है अपने देश में बनाना शुरू कर दिया।
जी प्रोफेसर पांडे, यहाँ पे मैं एक चीज जानना चाहूंगा, रक्षा क्षेत्र में जो आपने सहयोग की बात की, तो अभी भारत और देशों से भी काफी, जैसे आपने भी कहा, हथियार ले रहा है या जो विमान ले रहा है, तो क्या अब उस तरह की टेक्नोलॉजी या उस तरह के हथियार, उस तरह के उपकरण हमें रूस से नहीं मिल पा रहे हैं या हमें उनकी जरूरत नहीं है?
नहीं, देखिए अभी भी मैं ये कहूंगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में रूस का मुकाबला कोई अन्य देश नहीं कर सकता है, जितनी सहजता से हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है। लेकिन विगत दो वर्षों में रूस जिस प्रकार संलग्न है यूक्रेन युद्ध में, उसके कारण रूस की अपनी आंतरिक आवश्यकताएं हथियारों की ज्यादा हो गई हैं, और अपनी सेना के लिए वो अधिक से अधिक हथियार मुहैया कराने का प्रयास कर रहा है। इसलिए थोड़ी कमी आई है और थोड़ा व्यवधान आया है। खैर, इसके पहले से भी, पिछले 20 सालों में भी बीच बीच में व्यवधान आते रहे, तो इसलिए भारत के लिए ये लाजमी हो गया था, आवश्यक हो गया था कि हम अन्य देशों से भी हथियार आयात करें। और इसके अलावा भारत ये भी चाहता है कि सभी देशों से उसके संबंध सुधरें। उस प्रक्रिया में और देशों से भी अगर हम आयात करते हैं तो एक तरह का विश्वास का रिश्ता उनसे भी कायम होता है। लेकिन इसका कदापि अर्थ ये नहीं है कि रूस के साथ रिश्तों में कोई कमी आई है।
जी प्रोफेसर पांडे, एक चीज मैं और आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगा कि जो रक्षा क्षेत्र में हमारे परस्पर सहयोग की बात है भारत और रूस के बीच में, तो दोनों सेनाओं का भी कुछ संयुक्त अभ्यास या इस तरह की कोई प्रक्रिया भी लगातार चलती रहती है?
जी बिल्कुल, विगत कई वर्षों से हम रूस के साथ संयुक्त अभ्यास करते रहे हैं। और यही नहीं, हमारे कई सैनिक जो हैं वो वहां रूस में जाकर हथियारों की ट्रेनिंग लेते रहे हैं, तो इसलिए ये एक और आयाम है हमारे संबंधों का।
एक चीज प्रोफेसर पांडे और मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पर जो सामरिक क्षेत्र या सैन्य क्षेत्र में सहयोग के अलावा जो व्यापार का क्षेत्र है, तो व्यापार के क्षेत्र में भारत और रूस में किस तरह के संबंध अभी हैं और अभी और क्या संभावनाएं हैं इन क्षेत्रों में?
दरअसल तीन चार साल पहले तक जो आर्थिक सहयोग है वो हमारे संबंधों की कमजोर कड़ी माना जाता रहा है, क्योंकि राजनीतिक और अन्य प्रकार के संबंधों के प्रगाढ़ होने के बावजूद जो हमारा द्विपक्षीय व्यापार है वो 9, 10, 11, 12 बिलियन डॉलर एक साल में बस होता था, जबकि चीन के साथ, जिसके साथ हमारे संबंध थोड़े मुश्किल हैं, उनके साथ आप जानते हैं 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार भारत का है। लेकिन पिछले दो सालों में व्यापार में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को आई है, तकरीबन 6 गुना वृद्धि हुई है और अब 65 बिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार है। ये अलग बात है कि इसका अधिकतम जो है वो जो तेल आयात हम विगत 2-3 वर्षों से कर रहे हैं रूस से, ज्यादातर इसी कारण है ये बढ़ोतरी जो है। तेल हमें दरों पर मिल रहा है इसलिए हम कर रहे हैं।
जी प्रोफेसर पांडे, जैसा आपने तेल का जिक्र किया और भारत काफी बड़ी मात्रा में रूस से हमेशा से ही तेल आयात करता रहा है, और अगर हम बात करें विगत वर्षों में तो हमें काफी सस्ता तेल भी रूस से मिल रहा है, और जहां तक मैं समझता हूं शायद हमें रुपए में भी जो भुगतान है उसको करने की अनुमति है, वो शायद यूक्रेन के साथ जो रूस का युद्ध है उसकी वजह से ये परिस्थितियां हैं। इससे भारत को कितना लाभ मिल रहा है?
देखिए लाभ तो है, लेकिन चूंकि तरह तरह के प्रतिबंध यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने और पश्चिम के देशों ने लगा के रखे हैं, इसलिए हमें एक बड़ी अड़चन है। अब तेल के व्यापार में तो ये फिर भी हम किसी प्रकार, एक तो रुपए में जो लेन देन कर रहे हैं हम, वो हमारे लिए बड़ा यूजफुल कारगर रहा है, लेकिन जो स्विफ्ट अरेंजमेंट है जिसके तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो ट्रांसफर होता है पैसा, उससे चूंकि रूस को बाहर कर दिया गया है, इसलिए हमारे संबंधों में ये एक बहुत बड़ी अड़चन आ रही है। और इसीलिए तेल के क्षेत्र में अच्छा आयात होने के बावजूद हम निर्यात जो है ज्यादा 4-4.5 बिलियन डॉलर का ही निर्यात हम एक साल में पिछले हमने किया है, जो कि काफी कम है, तो ये एक समस्या है
जी। तो प्रोफेसर पांडे, और इसके अलावा और ऐसे कौन से नए क्षेत्र हैं जिनमें भारत और रूस संभावनाएं तलाश सकते हैं? खासतौर से भारत किन क्षेत्रों में ऐसी संभावनाएं ढूंढ सकता है जिससे भारत को लाभ हो?
देखिए, रूस तेल के अलावा अन्य बहुत सारी चीजें, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या फिर फर्टिलाइजर्स, ये एक बहुत बड़ा निर्यातक रूस रहा है और भारत जो है एक बड़ा आयात करने वाला देश है फर्टिलाइजर्स का। आईटी के क्षेत्र में और इसी प्रकार हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा उनसे निकट सहयोग रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी संभावनाएं अभी हैं जो हम पूरी नहीं कर पाए हैं और ये प्रतिबंधों के नाते इसमें अड़चन भी आ रही है
जी। प्रोफेसर पांडे, क्या आप इस तरह की हमें कुछ जानकारी देंगे कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं या वस्तुएं हैं जो भारत रूस को निर्यात कर रहा है और जिसमें अभी ये संभावना है कि उस निर्यात को हम आगे बढ़ा सकते हैं?
देखिए, सबसे ज्यादा निर्यात तो हमारा दवाइयां जो हैं और मेडिकल क्षेत्र में हमारे निर्यात सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा चाय और कुछ और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पिछले 2-3 सालों में रूस में जब युद्ध के दौरान उनके यहाँ बहुत सारे इंजीनियरिंग स्पेयर पार्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स की कमी हो गई है और भारत इस संबंध में भारत का निर्यात बढ़ा है, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि जो प्रतिबंध हैं उसके कारण जितनी संभावनाएं हैं इसमें हमारा निर्यात बढ़ाने की या आपसी सहयोग करने की वो पूरी नहीं हो पा रही है।
प्रोफेसर पांडे, इसके अलावा सांस्कृतिक क्षेत्रों में जैसा आपने भी जिक्र किया, हमारी बहुत लंबी भागीदारी रही है दोनों देशों के बीच में, तो सांस्कृतिक क्षेत्र की दृष्टि से हम देखें तो संबंधों में अभी और क्या विस्तार दिया जा सकता है?
देखिए, ये बात ज्यादातर श्रोता जानते होंगे कि सोवियत समय से भारतीय संगीत, नृत्य और भारतीय सिनेमा सोवियत संघ में भी बहुत पॉपुलर था, प्रचलित था। राज कपूर का नाम वहां बच्चा बच्चा जानता था, नरगिस का नाम, और बाद के दिनों में अमिताभ बच्चन रहे हों या मिथुन चक्रवर्ती रहे हों, तो भारतीय सिनेमा, संगीत, नृत्य, हमारा जो सांस्कृतिक केंद्र है मॉस्को में, अन्य जगहों पर भी है, वहां एक बड़ी संख्या में रूसी लोग हिंदी सीखने, अन्य भारतीय भाषाएं सीखने, भारतीय नृत्य और योग उसकी भी क्लासेस वहां चलती हैं और इनमें बहुत पॉपुलर है। एक बड़ी संख्या में भारतीय छात्र जो हैं वो रूस के मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने जाते रहे हैं। वहां पर एक लंबा इतिहास रहा है इंडोलॉजी का और ओरिएंटल स्टडीज का, 100 साल से भी ज्यादा पहले ओरिएंटल स्टडीज वहां शुरू किया गया था। तो सांस्कृतिक रूप से हमारा सहयोग करीबी रहा है और हमारी संस्कृति, हमारे नृत्य, हमारे संगीत, हमारा सिनेमा वहां बहुत ही प्रचलित रहा है, बड़ा पॉपुलर रहा है, आज भी लोग देखते हैं।
प्रोफेसर पांडे, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी और हम ये उम्मीद रखते हैं कि दोनों देशों के जो संबंध हैं वो आने वाले समय में और भी प्रगाढ़ होंगे। इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत रूस के मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे JNU के रूसी और मध्य एशियाई अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर संजय कुमार पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।